निराश मन लिए वे लौट आए। रमेश ने बहुत समझाया, ढाढ़स बंधाया, वे नहीं माने। अमित चुप था, बिल्कुल गुमसुम। उसने स्वयं को असहाय पाया। वीणा के लिए कुछ करना चाहता था, कोई जादू टोना नहीं जानता था जो कुछ कर पाता। वीणा थी कि हंसी भूल गई थी, बस बात बात पर आंसू बहाती थी। लेकिन न जाने किस मिट्टी की थी कि वह देव की बुराई नहीं सुन पाती थी। देव की, देव के परिवार की बुराई करने वाला उसे अपना दुश्मन लगता था। यहां तक कि अपनी बड़ी बहन सुनीता भी बुरी लगने लगी थी, जब उसने दिल्ली आकर देव के प्रति ढेर सी शिकायतों का पुलिंदा वीणा के सम्मुख खोला था। अपनी हमदर्दी जताई थी उसने जब वीणा के प्रति यह कहकर कि वीणा तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, चलो यहां से, नहीं रहना तुम्हें यहां देव के साथ। क्या दिया है उसने तुम्हें? नौकरानी से भी बदतर जिंदगी बन गई है तुम्हारी। यह सुनकर वीणा बहुत रोई थी, और जब चुप हुई तो दो शब्द बोलकर उसने सुनीता का मुंह बंद कर दिया था। बड़ी बहन हो मेरी, फिर भी अपनी छोटी बहन का सुहाग उजाड़ना चाहती हो? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी, मेरे देव में कोई खोट नहीं। यदि दोष है तो केवल मेरे भाग्य का। बस आज के बाद तुम इस विषय में कोई बात नहीं करना। कुछ देर तो सुनीता चुप रही, लेकिन बड़ी बहन थी उसकी, हितैषी भी थी, वीणा को बोलने से रह नहीं पाई। तुम कौन से युग की बात कर रही हो? सच्चाई तुम्हारे सामने है। शादी के बाद एक दिन भी सुख मिला है तुम्हें? शादी की है? शादी होती है क्या? बस सुबह शाम दिन रात पति के सिरहाने बैठकर उसकी मालिश करने के लिए, उसे जब तब दवाई खिलाने के लिए, उसकी गंदगी साफ करने के लिए। उन्हें शादी करनी जरूरी थी क्या? इस सब के लिए एक नर्स ही रख लेते। भाई अमीर है, सब खर्च सहन करते हैं, क्या नर्स का खर्च सहन नहीं कर सकते थे? बस भी करो दीदी तुम, मुझसे नहीं सुना जाता यह सब, वीणा ने आंसू बहाते हुए कहा। क्यों बस करूं? आज तुम्हें मैं दुश्मन लग रही हूं, तुम्हारे सुहाग की दुश्मन। कल जो होना है उसे तुम जानती हो। क्या कर लोगी तुम? कैसे काटोगी तुम जिंदगी? सुनीता बहुत स्पष्टवादी थी, शब्द वही प्रयोग करती थी जो उसका मन कहता था, चाहे कितने कठोर शब्द क्यों ना हो। मुझे कल क्या करना होगा अभी नहीं सोच रही, बस मुझे आज की चिंता है, मुझे अपने देव की चिंता है। वह मेरा है और उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। वह रो रही थी और रोते रोते बोले जा रही थी, मुझे देव से शारीरिक सुख नहीं प्राप्त हुआ, इसका मुझे कोई गम नहीं। मेरी शारीरिक भूख से ज्यादा बड़ी भूख मेरे मन की है। मेरा मन देव को पाकर तृप्त हो गया है। उसे बीमारी ना होती तो क्या कमी थी उसमें? बोलो, जब वह देहरादून आया था तो कैसा लगा था तुम्हें? देवताओं की छवि देखी थी तुमने उसमें? कैसा तेज उसके चेहरे पर महसूस किया था? आज वह अपनी जिंदगी के लिए तड़प रहा है तो मैं उसे छोड़ जाऊं? इतनी जल्दी साथ छोड़ने के लिए नहीं हुई मेरी उससे शादी। वह अच्छा इंसान है, उससे तब तक बंधी हूं जब तक वह है। उसका नाम है, वह नहीं रहेगा, अभी से उसकी कल्पना नहीं कर सकती। अभी आशा है, शायद कोई चमत्कार हो जाए, उसके नहीं तो मेरे भाग्य से ही। वीणा चुप हुई तो सुनीता को उस पर बहुत प्यार आया। उसे अपनी बाहों में भरकर उसे पुचकारते हुए बोली, मैं तुम्हारे मन को समझती हूँ, लेकिन पगली मैं तेरी दुश्मन हूँ क्या? तुझे यूं तिल तिल कर पल पल बिताते देखकर मैं चुप देखती रहूं? अच्छा लगेगा मुझे ऐसा? तेरे साथ बचपन बिताया है सारा, हर खुशी हर दुख में सात दिन बिताए हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता तेरा यह रूप, मैं क्या करूं? कोई उपाय मेरे पास भी तो नहीं? काश मैं कोई जादू चमत्कार कर सकती, लेकिन क्या है, दिखता कुछ नहीं, बस धोखे के सिवाय। मेरी बुद्धि मेरे हिसाब से ही चलती है। तब सुनीता भी बहुत रोई थी। रीटा देव के साथ खालसा कॉलेज में लेक्चरार थी। देव से मिलने आई, तब देव सो रहा था। वह वीणा के पास बाहर ही बैठ गई। देव के विषय में पूछने के बाद वह बोली, कल मेरे एक रिश्तेदार आए थे घर। उन्होंने मुझे बताया कि यहां दिल्ली बॉर्डर पर एक गांव है बकोली, वहां एक बाबा जी रहते हैं, अनाथ आश्रम बना रखा है उन्होंने। साथ ही वह जड़ी बूटियों से कई असाध्य बीमारियों का इलाज करते हैं। तुम एक बार देव को लेकर वहां चली जाओ, शायद कुछ चमत्कार हो जाए। रीटा की बात सुनकर वीणा के चेहरे पर आशा की किरण चमक उठी। वह बोली, हां जरूर जाऊंगी मैं, कल ही, अभी अमित आएगा, आप उसे सही पता बता देना। तब रीटा ने कहा, पता बिल्कुल आसान है, अलीपुर से आगे बकोली गांव में जाकर किसी से भी पूछ लेना बकोली वाले बाबा जी का पता। फिर कुछ सोचकर रीटा बोली, तुम कहो तो मैं अपने रिश्तेदार को लेकर कल सुबह आ जाती हूँ। नहीं नहीं, आप कष्ट ना करें, मेरे साथ अमित जाएगा, कोई परेशानी होगी तो मैं आपको बता दूंगी। वीणा के चेहरे पर आशा की कई किरणें चमकने लगी थी। रीटा चली गई और वीणा अपनी सास के पास जाकर सब बात बताने लगी। देव अभी सो रहा था। सुबह 7 बजे ही देव, वीणा और अमित बकोली पहुंच गए। आश्रम ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं हुई। आश्रम में उस समय प्रार्थना हो रही थी। उन सभी को वहां पहुंचकर बहुत अच्छा लगा। वहीं खड़े एक सज्जन से उन्हें जानकारी मिली कि बाबा जी ने इस प्रांगण में अनाथ बच्चों के रहने की पूरी व्यवस्था के साथ साथ एक पाठशाला भी खोल रखी है और सुबह के समय लगभग 4 घंटे रोगियों को निशुल्क दवाइयां बांटने का कार्य भी करते हैं। वहीं एक चबूतरे पर जाकर तीनों बैठ गए। अभी उनसे पहले केवल एक व्यक्ति और वहां बैठा था। 10-15 मिनट की प्रतीक्षा के बाद बाबा जी वहां आ गए। तब तक करीब 20 लोग वहां आ चुके थे। देव का नंबर दूसरा ही था। बाबा जी ने देव की नाड़ी की परीक्षा की, फिर बोले, पेट की बीमारी से ग्रस्त हो तुम, लेकिन अब रोग बढ़ चुका है। जी बाबा जी, मेरा 3 वर्ष पहले ऑपरेशन हुआ था और मेरा गुदा ही निकाल दिया था। अभी देव ने इतना ही कहा था कि बाबा फिर बोले, ओह तो तुम्हारे कृत्रिम मल द्वार बनाया हुआ है और कैंसर दोबारा फैल गया है। देव को आशा नहीं थी कि बाबा को इतनी जानकारी होगी। उसका विश्वास जो कि वीणा का बनाया था स्वयं बढ़ गया बाबा के प्रति। स्वीकृति में देव के हाथ स्वतः ही जुड़ गए। तब बाबा बोले, देखो बेटा, तुम्हारा रोग इतना बढ़ गया है कि मैं तुम्हें कुछ निश्चित होकर नहीं कह सकता, लेकिन ईश्वर की बनाई हुई इस प्रकृति से कई जड़ी बूटियां मैंने इकट्ठी की हुई हैं, उनके सेवन से तुम्हारे विकारों का वेग कम जरूर हो जाएगा। आगे सब उसी ईश्वर पर निर्भर करता है। मैं तुम्हें दवाई दे देता हूं, नियमित रूप से इसका सेवन करते रहना। तब बाबा जी ने उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा और भीतर अपनी कुटिया में चले गए। बाहर लौटे तो उनके हाथ में एक लिफाफा था जिसमें कई जड़ी बूटियां पड़ी थी। अपने एक शिष्य को उन्होंने पुकारा और समझाया, सबको पीसकर कपड़ छान कर दो और इसकी बराबर 30 पुड़िया बना देना। फिर देव के आमुख होकर बोले, नित्य 4 पुड़िया खानी होंगी दूध के साथ, चाय खट्टा सब बंद, हल्का खाना और रसदार फल खाते रहना। दर्द के लिए तेल भी अभी दूंगा। तब देव, वीणा व अमित ने झुककर बाबा जी के चरण स्पर्श किए और वहीं मंदिर के बरामदे में जाकर बैठ गए। दवाई तैयार होने में अभी देर थी। एकाएक सब बदलने लगा। डर व्यक्ति को बहुत क्षीण कर देता है। मानसिक तनाव में बीमारी की गति भी तीव्र हो जाती है। मन अच्छा है तो सब अच्छा लगता है, मन दुखी तो सब बदला सा लगने लगता है। वीणा ने देखा देव बुझ सा गया है, चेहरे का तेज लुप्त हो गया है उसका। घर में जब भी अकेला पड़ता ना जाने क्या सोचकर आंसू बहाने लगता। काया भी क्षीण पड़ गई थी उसकी। दाई टांग अब दर्द के कारण नीचे नहीं रख पाता था। जब भी उठता वीणा का सहारा लेकर या फिर लाठी के सहारे। समय की मार ने उसे अधमरा कर दिया था। आज वीणा का सहारा था या फिर इस लाठी का सहारा। वही लाठी जो वह अपने बाबूजी के लिए खरीद कर लाया था कभी उनको बुढ़ापे में सहारा देने को, आज वह उसका सहारा बनी हुई थी। और दूसरी लाठी उसे वीणा के रूप में ईश्वर ने प्रदान की थी। न जाने उसके किन अच्छे कर्मों का परिणाम थी वीणा, जिसने उसके जीवन में आकर जीने की तमन्ना बढ़ा दी थी। वीणा को देखकर आंसू बरबस उसकी आंखों से बह निकलते थे। और वीणा थी न जाने किस मिट्टी की बनी गुड़िया, इस दुनिया में आई, बड़ी हुई, ब्याह रचाया, सुंदर कल्पनाएं की अपने भविष्य की, और देखते देखते सभी कल्पनाएं पंख लगाकर उड़ गई। जीवन के ऐसे सत्य की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। रोती थी कभी बाथरूम में जाकर, कभी अमित के पास बैठकर, कभी कृष्णा की गोदी में सिर रखकर, लेकिन देव के सामने आकर भूल जाती थी अपने सब दुख, बस उसे ही दिलासा देती थी। बाबा जी की दवाई से कोई चमत्कार नहीं हुआ, किसी साधु महात्मा को खाना खिलाकर चमत्कार नहीं हुआ, महामृत्युंजय का जाप करके भी कोई फल सामने नहीं आया। हां, एक महीना और बीता तो पाया अब सिर के पिछले भाग में कोई फोड़ा सा निकल आया है। देव ने छुआ उसे, हल्का सा दर्द महसूस हुआ। वीणा को अपने मुंह से बताना चाहकर भी नहीं बोल पाया, बस रुंधे गले से बोला, अब कुछ शेष नहीं बचा वीणा, अब मेरा तुम्हारा कुछ दिनों का और साथ रह गया है, बस अब मैं चला जाऊंगा। रुलाई रोक नहीं पाया देव। वीणा ने सुना, देखा उसे निकट आकर देव के सिर में हाथ फेरने लगी। देव शायद यही चाहता था। पल भर में वीणा को पता चल गया कि क्यों फिर से देव आज वही पुरानी बात दोहरा रहा है। ये क्या देव, एकाएक यह फोड़ा कैसे हो गया? वीणा देव के सिर के बालों को अपनी अंगुलियों से हटाते हुए बोली, रात तक तो कुछ नहीं था, बस अब कुछ नहीं रहा शेष। लगता है ये कैंसर मेरे शरीर में फैल गया है। देव के आंसुओं का वेग बढ़ने लगा था। देव ऐसा मत बोलो, अपने मन को काबू में रखो, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी चलते हैं डॉक्टर के पास।
वही बताएगा क्या है यह। वीना बोली, जैसे अभी भी डॉक्टर का सहारा शेष बचा हो उसके पास।
कौन से डॉक्टर के पास? कौन है जो इस घड़ी कह रहा हो कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी देव बच सकता है? देव का आक्रोश था जो फूटा, लेकिन वीणा उसे संभालते हुए बोली,
डॉक्टर के ना सही बाबा जी के पास ही चलते हैं।
कुछ ना सही इसको बढ़ने से रोकने की दवा हमें शायद उनके पास से मिल जाए। वीणा हिम्मत जुटा रही थी, लेकिन देव की दशा इसके विपरीत थी। बोला,
बहुत भूली हो वीणा, अब क्या करेंगे बाबा जी?
उन्होंने कहा था कि रोग बहुत बढ़ चुका है, इसके वेग को कम करने की कोशिश करेंगे।
ईश्वर पर विश्वास रखने को भी तो कहा था।
बोली वीणा, देव अब तुम कुछ हठ ना करो, मुझे दे दो सब चिंताएं अपनी, सब दुख अपने, मैं रोक सकी तो रोक लूंगी सब कुछ। अब तुम मेरे भाग्य को मुझे स्वयं बनाने दो, तुम अब मेरे विश्वास को सहारा दो, मुझे अपने लिए कुछ करने दो।
वीणा रो भी रही थी, लेकिन अपनी वेदना को अपने शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश भी कर रही थी। देव ने समझा उसे, उसके मनोभावों को, समझाया स्वयं को और बोला,
तुम जो कहोगी, जो चाहोगी वही करूंगा, तुम आंसू ना बहाओ, जहां ले चलोगी वहीं चलूंगा,
बस अब चलो बाबा जी के पास। वीणा ने निर्णय सुनाया, तुम्हें मैं झटपट तैयार करती हूं, अब जो भी होगा देख लेना, चमत्कार ही होगा।
सच की रोशनी इतनी तीव्र हो चुकी थी कि वीणा की आंखें चौंधिया सी गई थी उसमें, कुछ शेष दिखाई देना बंद हो गया था।
सच कैसा है इसका वर्णन तो वह बंद आंखों से नहीं कर सकती थी। उसे लग रहा था सच है उसका देव, देव का जीवन जिसे उससे कोई छीन नहीं सकता।